ओम शांति। हमारे बीच भ्राता आत्म प्रकाश भाई पधारे हैं, हम उनका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आत्म प्रकाश भाई को हम सब जानते हैं, अपने पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन तीनों ही परिसर का टोली विभाग आत्म प्रकाश भाई संभालते हैं। आप सबने टोली पाई है ना। आत्म प्रकाश भाई वैसे 50 साल से मधुबन हेडक्वार्टर में समर्पित रूप से सेवा कर रहे हैं। भाई साहब ने राजयोग में विशेष अभ्यास किया है और सिर्फ स्वयं नहीं, सबको ये अभ्यास कराने हेतु, योग का गहन अनुभव कराने हेतु उन्होंने भारत के सारे राज्यों में भ्रमण किया, साथ साथ विश्व में भी पांचों ही द्वीपों में, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, पांचों ही द्वीपों में 61 देशों में उन्होंने बहती गंगा बन करके सभी जगह राजयोग का गहन अनुभव कराया। आज हमारे बीच भी हम सबको उड़ती कला में कैसे जाए, उसकी विधि क्या है, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे भ्राता आत्म प्रकाश भाई।
ओम शांति। उड़ती कला में उड़ने की विधि, हम सभी आत्मा रूपी घोड़े स्पिरिचुअल रेस में दौड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं समय की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो समय की रफ्तार के साथ स्थिति की रफ्तार तेज करना बहुत जरूरी है और उसके लिए उड़ती कला में उड़ने की विधि को अपनाना बहुत जरूरी है, तभी हम समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। बाबा ने भी हमें इशारा दिया है, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो समय के साथ साथ खुद को भी आगे बढ़ना है। इसलिए उड़ती कला में उड़ते रहना यही एक ऑप्शन हमें है। उड़ती कला में उड़ना अर्थात एक सेकंड में आत्मा रूपी पंछी इस पिंजरे से न्यारा होकर परम धाम में उड़कर चला जाए और बाबा की याद में खो जाए एक सेकंड में। तो ये लंबे समय का अभ्यास चाहता है। अंतिम पेपर भी हमारा यही है, किसी भी सिचुएशन में हम अंत में होंगे, एक सेकंड में देह से न्यारा होकर उसी सेकंड बाबा का प्यारा अर्थात याद में खो जाना, ये हमारा अंतिम पेपर है। उस पेपर में भी अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए ये कला हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए जो भी बातें मददगार हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मुख्य 10 बातें हैं, उन्होंने से जो भी बातें आप अपनाते जाएंगे आपकी स्थिति आगे ही आगे बढ़ती जाएगी। पहली बात, उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए मन और बुद्धि को सदा हल्के रखना जरूरी है। हम देख रहे हैं जैसा समय आगे बढ़ रहा है हम सेवा में बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं, तो जितना बिजी उतना इजी हमको रहना है। मन बुद्धि को बिल्कुल हल्का रखना है, क्योंकि हल्की चीज ही ऊपर ऑटोमेटिक जाने लगती है। तो जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा को देना है, लौकिक जिम्मेदारी अलौकिक जिम्मेदारी जो भी हमें मिली है ब्रह्मा बाबा के कंधे पर हमें रखना है और स्वयं को एकदम हल्का अनुभव करना है। हल्की अर्थात है लकी। जो आत्मा मन बुद्धि से हल्की रहती है वो हमेशा उड़ती कला में उड़ती रहती है और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करती रहती है और अपने भाग्य का सितारा चमकाती रहती है। इसलिए संगम युग में स्वयं को हल्का अनुभव करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए मदद करने वाली दूसरी बात ये भी है, नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। कोई भी दर्श हमारे सामने आता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस समय हमने नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। अगर नथिंग न्यू का पाठ नहीं अपनाते हैं तो व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता जाएगा और स्वयं को बोझिल अनुभव करते जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा बाप समान हमें सदा हल्का रहना है। दूसरी बात, उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए उमंग और उत्साह के जो पंख हैं ये मजबूत होते रहना बहुत जरूरी है। जितने ये मजबूत होंगे उतनी ऊंची उड़ान अध्यात्म आकाश में हम उड़ते रहेंगे और उड़ती कला की अनुभूति में खोए रहेंगे। उसके लिए सारे दिन भर में हमें समान के सिंहासन पर बैठे रहना है। जब समान के सिंहासन पर बैठते हैं तो अलौकिक नशे की अलौकिक खुशी की अनुभूति हमें होती है। अपने भाग्य के गीत गाते रहें और समान के अभ्यास में सदा मस्त रहें, क्योंकि जितना समानधारी हम रहते हैं उतना ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती है। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। उड़ती कला की अनुभूति करने के लिए ये बात बहुत मददगार साबित होती है। इसलिए दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशा हमारा बढ़ता रहे, राजा महाराजा बनना अर्थात बहुत ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना, तो ये पंख मजबूत होते जाएंगे तो हम उड़ती कला की अनुभूति सहज करते जाएंगे। माया हमेशा प्रयास करती है इन पंखों को कमजोर करने का या कोई ना कोई पंख को काटने का, हमारी उड़ान वो छीनना चाहती है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना है और इन दोनों पंखों को मजबूत अनुभव करते जाना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां बनने वाले हैं। इसलिए जब सिंहासन पर बैठेंगे वो रॉयल्टी, वो नशा, वो मस्ती, वो कुमारी हमारे चेहरे पर अनुभव होना जरूरी है। इसके लिए अभी से ही वो सम्मान का अभ्यास करते रहना जरूरी है। तीसरी बात, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए पवित्रता की स्थिति को बहुत सूक्ष्म रीति से आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि जब रॉकेट को किसी ग्रह पर भेजते हैं तो उसका जो पेट्रोल होता है वो बहुत रिफाइन होता है, उसको कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो हमारा जो रॉकेट है जिसको हमने बाबा के पास उड़ाना है उसका पेट्रोल है पवित्रता की शक्ति। तो जितनी जितनी पवित्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है उतना ये आत्मा का रॉकेट तेजी से बाबा के तरफ उड़ने लगता है। हम देखते हैं शांति स्तंभ में ब्रह्मा बाबा खड़े हमें दिखाई देते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य, पवित्रता को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य शब्द कहां से आया? ब्रह्मा बाबा के नाम से ये शब्द निकला है। इस संसार में सबसे ऊंची पवित्रता की स्थिति ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त की है, इसलिए हम सभी उसके मुखमंशावली बच्चे, उनको भी ऐसी ऊंची पवित्रता की स्थिति अनुभव करनी है। तो इसके लिए आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि को हम पक्का करते चलें। भाई बहन की दृष्टि से भी हमें ऊपर उठना है, तभी हमें ऐसी सुंदर पवित्रता की स्थिति की अनुभूति होती रहेगी। क्योंकि जितनी पवित्रता उतनी पात्रता भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए होती है। आत्मा की जो क्वालिटी है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वो पवित्रता के आधार पर निर्भर होती है। इसलिए हमें बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति को अनुभव करते जाना है। जितना पवित्रता का ताज हमारा बड़ा होगा, विशाल होगा, उतना ही भविष्य में राजाई का बड़ा ताज हमें मिलता है। यहाँ का पवित्रता का ताज सतयुग के वैभव के ताज से कनेक्टेड होता है। चौथी बात, उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए हमें इस पुरानी दुनिया में और इस पुराने शरीर में गेस्ट मेहमान अनुभव करना है। इस पुरानी दुनिया को गेस्ट हाउस अनुभव करना है। गेस्ट हाउस कितना भी बढ़िया हो, सोने के चमचमाते दरवाजे हो, खिड़कियां हो, फिर भी आपको चैन की नींद अपने घर में ही आएगी। रेस्ट हाउस परम धाम हमारा है, उस रेस्ट हाउस में हमें रेस्ट करने के लिए जाना है, तो इस गेस्ट हाउस से उपराम अनुभव करना जरूरी है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ मेहमान हूँ उस पुरानी दुनिया में और इस पुराने शरीर में। तो स्वतः ही डिटैच अनुभव करेंगे, और जब डिटैच अनुभव करेंगे तो बाबा से सहज अटैच अनुभव करेंगे, बुद्धि बाबा से सहज जुट जाएगी। जितना यहां से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, है ना? तो इस बॉडी ने हमें कौड़ी बना दिया है, अभी हमें हीरा बनना है तो गॉड की कंपनी में रहना होगा। तो गॉड की कंपनी में रहने से ऑटोमेटिक आत्मा रूपी हीरे की चमक बढ़ती जाएगी और ऐसे सुंदर उड़ती कला की अनुभूति हम करते जाएंगे। छठवीं बात है, छठवीं ना, पांचवी बात है, हाँ, उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए तीन ड्रेसेस का हमें प्रयोग करते जाना है। बाबा जो हमारा साजन है, हम आत्माओं रूपी सजनियों को बाबा ने बहुत सुंदर ड्रेसेस दिए हैं। आप बताओ, आपके पास बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं, वो अलमारी में रखने से खुशी होगी या पहनने से खुशी होगी? बताइए, पहनने से खुशी होगी। तो इसलिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर तीन ड्रेसे दिए हैं। ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस और देवता स्वरूप की ड्रेस। ये केवल बुद्धि रूपी अलमारी में हमें नहीं रखना है, इनको सारे दिन भर में बार बार हमें आत्मा को पहनाते रहना है। उससे क्या होगा, ये ब्राह्मण स्वरूप के फरिश्ता स्वरूप के संस्कार आत्मा में भरते जाएंगे और हमारी फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप निखरता जाएगा। इसलिए जब भी हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं तो मुझ आत्मा ने ये स्थूल पांच तत्वों से बनी हुई ड्रेस धारण की है ऐसा न समझें, लेकिन उसके बजाय मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है, ऐसा हमें अनुभव करना है। मधुबन में आप सभी बैठे हैं, मधुबन बहुत ही श्रेष्ठ स्थान सारे विश्व में है। इस ग्लोब पर यहाँ जितनी सुंदर अलौकिक अनुभूति हम करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करके ऐसी सुंदर अनुभूतियां हम करते रहते हैं, इसलिए इसका लाभ लेना है। क्योंकि हमने देखा है 18 जनवरी के दिन जब बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं तो मधुबन मधुबन नहीं लगता है, ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया ही इस धरती पर अवतरित हो चुकी है। सभी बाबा के बच्चे साइलेंस में रहते हैं, प्यार में बाबा के खोए रहते हैं, चार धाम की यात्रा करते रहते हैं और सबको फरिश्ता ही अनुभव करते हैं, देखते हैं। तो ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया इस धरती पर अवतरित हो चुकी है। तो ऐसा हमें आत्मा को ये फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस बार बार पहनाते रहना है और बहुत सुंदर सजी सजाई नारायण जैसी, लक्ष्मी जैसी, दिव्य गुणों से भरपूर, सजी सजाई ड्रेस, देवताई ड्रेस भी हमें आत्मा को पहनाते जाना है। तो स्वतः ही देवी संस्कार आत्मा में धारण होते जाएंगे और उड़ती कला की अनुभूति में ये बात बहुत मदद करती रहेगी। छठवीं बात है, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए बाबा को हमें अपना संसार अनुभव करना है। संसार में रहते हुए बाबा मेरा संसार है ऐसी अनुभूति को बढ़ाते रहे। संसार में केवल दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव, तीसरी चीज नहीं है। तो जो प्राप्तियां हमें व्यक्ति और वैभव से होती हैं, वो प्राप्तियां हमें बाबा से करनी है। और जब बाबा से वो अनुभूतियां करते रहते हैं तो बाबा ही हमारा संसार अनुभव होने लगता है। क्योंकि कृष्ण को ठाकुर कहते हैं, ठाकुर माना एक ठिकाने पर अपनी बुद्धि को लगाने वाले, ठिकाने वाले। तो ये ब्रह्मा बाबा की ही यादगार नहीं है स्थिति की, हम बच्चों की भी यादगार हैं। तो मन बुद्धि को परम धाम में एक ठिकाने पर हमें लगाते जाना है और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई हमें करते जाना है और बाबा को ही हमें अपना संसार बनाना है। क्योंकि बाबा सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं, सर्व रसों के भंडार हैं, सर्व संबंधों की शकरीन हैं। तो द्वापर युग से हमने अपनी मन और बुद्धि को बहुत भटकाया, बहुत भटकाया। छोटी मोटी प्राप्ति के लिए कितनी मेहनत किया, भटकाते रहे। अभी हमें अपने मन और बुद्धि पर रहम करना है और मन और बुद्धि को एक ठिकाने पर लगाते जाना है और सर्व प्राप्तियां बाबा से ही हमें करते रहना है। सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा से ही हमें करते रहना है। आपने सोचा होगा, बाबा कहते हैं सभी संबंध मेरे साथ अनुभव करो, क्या इसके पीछे राज है? सोचा होगा, आप सभी महान अनुभूति विभूतियां यहां बैठी है, बोलिए क्या राज है इसके पीछे? किसी के साथ अगर हमारा लगाव होता है, विशेष मम्मी पापा भाई चाचा चाची जो भी हैं, वो विशेष अनुभव हम बाबा के साथ करते हैं तो उस वहां से हम डिटैच होते हैं, बाबा से अटैच होते हैं। फिर भी कोई समस्या नहीं होगी तो भी हमने बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना जरूरी है, क्या इसके पीछे राज है? बोलिए। हाँ जी, 84 जन्मों में हमने अलग अलग रोल बजाना है। आधे जन्म मेल के, आधे जन्म फीमेल के होते हैं, ये तो बाबा ने स्पष्ट बता दिया है। लेकिन 84 जन्मों में जो भी हमें रोल मिलेगा, वो रोल हम अच्छी तरह से बजा सकें, वो संस्कार हमें अभी घर जाने के पहले आत्मा में भरना है। कैसे? बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही उसके स्तन के पास दूध पीने के लिए दौड़ता है, कोई उसको ले जाता नहीं, क्योंकि उसमें वो संस्कार होता है। तो ऐसे जो भी रोल हमें मिले, बहुत अच्छी तरह से हम उसको बजा सकें, इसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहना बहुत जरूरी है, ये इसके पीछे राज है, है ना? सातवीं बात, उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए why और what इन दो शब्दों को परिवर्तन करना है। कोई भी बात होती है तो हम why 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 करते रहते, क्या 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 हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ हुआ, क्या हुआ, तो कुछ हुआ नहीं, कछुआ वृत्ति को अपनाना है। जब भी कोई बात, कुछ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो अभी वाय को हमने फ्लाई में परिवर्तन करना है। वाय के बजाय उड़ती कला में हमें उड़ते रहना है। ये तो होना ही है, जो भी होता है तो बाबा ने पहले से ही बता दिया है, हमने उस जाल में फंसना नहीं है, लेकिन फ्लाई होना है, मुझे उड़ती कला में उड़ते रहना है। ऐसी अनुभूति हम करते रहें, ऐसा अभ्यास करते रहें, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है उसमें हमें फंसना नहीं है, बुद्धि को उसमें नहीं लगाना है, हमें वहां से डिटैच होके न्यारा साक्षी दृष्टा अनुभव करना है। जितना साक्षी उतना साथी अनुभव बाबा को करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने साक्षी दृष्टा स्थिति को बहुत बढ़ाया था, इसलिए शिव बाबा को साथीपन की अनुभूति अच्छी तरह से करते रहे। और वाट को हमने व्हाइट में परिवर्तन करना है। व्हाइट किसकी निशानी है, शांति की निशानी है, फरिश्ते की निशानी है, तो पवित्रता की निशानी है, तो हमें व्हाइट को अपनाना है, इन दोनों तीनों बातों को अनुभव करते जाना है, तो ऑटोमेटिक ये व्हाट शब्द व्हाइट में परिवर्तन होता जाएगा। समझा, बस मुझे उड़ती कला में उड़ते रहना है, ऐसी अनुभूति करते जाना है, क्योंकि चलने का, हाई जंप करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी उड़ती कला में उड़ने का चल रहा है। रूहान स्थिति की अनुभूति करते हैं तो माना हम चल रहे हैं, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर रहे हैं माना हम उड़ रहे हैं, और शक्तिशाली बीज रूप स्थिति की अनुभूति कर रहे हैं माना हम उड़ रहे हैं, उड़ती कला की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना है, क्योंकि हमारी रेस योग में है। आपने सोचा होगा लक्ष्मी नारायण और राम सीता में अंतर क्या है, कोई भी राम सीता बनना नहीं चाहता है, सारी दुनिया उनके पीछे पागल है, राम सीता कोई बनना नहीं चाहता है, लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, भाई उन्हों में दोनों में अंतर क्या है बताइए, दो कला कम है, ये तो मोटा जवाब है। राम सीता बनने वाली आत्माओं ने खूब सेवा की, खूब सेवा की, खूब प्रजा बनाई, लेकिन योग में कमजोर रहे, अंत तक माया के साथ युद्ध करते रहे, संघर्ष करते रहे, इसलिए तीर कमान उनको गिफ्ट में दे दी, लो जो राजा और राज करो। और लक्ष्मी नारायण ये चारों सब्जेक्ट में फुल पास थे, इसलिए लक्ष्मी नारायण संसार की जो क्वालिटी आत्माएं हैं उन पर राज करते हैं, राम सीता क्वांटिटी पर राज करते हैं, इसलिए हमें योगाभ्यास में मास्टरी लेना है, योग में बहुत अच्छे मार्क्स लेना है, इसमें हमारी रेस है। अभी 9 तारीख को मैराथन होने जा रहा है प्रकाशमणि दादी जी के यादगार के निमित्त, तो जैसे मैराथन में जो दौड़ते हैं, जो आगे दौड़ते हैं उनको देखकर सभी खुश होते हैं, और जो पीछे दौड़ते हैं हाँपते रहते हैं, कहते हैं बिचारा थका रहा पीछे दौड़ रहा है, तो इस रेस में हमने आगे दौड़ना है, पीछे नहीं रहना है, केवल रनर नहीं बनना है, विनर हमें बनना है, हम बेचारा नहीं हैं, तीन बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए इस रेस में हमने आगे दौड़ना है। जो आगे दौड़ते हैं बाबा उनको देखकर खुश होते हैं। तो इसलिए रेस में मैं उस आत्मा रूपी घोड़े को बहुत अच्छी तरह से दौड़ते रहना है, उड़ती कला में उड़ते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट आठवीं बात, उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए दुआओं का स्टॉक बढ़ाते रहे, दुआओं का खजाना बढ़ाते रहे। संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन, खूब दुआएं जमा करना है, क्योंकि जब शरीर हम छोड़ते हैं हमारे साथ केवल दुआओं का खजाना चलता है, उसके आधार पर हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। इसलिए सेवा के जो भी साधन हमें बाबा ने दिए हैं उसमें यूज करना है और दुआओं का खजाना बढ़ते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। क्योंकि दुआओं का खजाना जितना बढ़ता है उतनी एक अजीब सी खुशी अनुभव होती है, और वो अजीब सी खुशी जो होती है ना योगाभ्यास में चार चांद लगा देता है। बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें योगाभ्यास में ये खुशी कराता है। मैं यहां बैठा हूं कुर्सी पर, मुझे उठना है तो मुझे थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन 10 लोग हाथों से उठा रहे हैं तो मुझे हल्का अनुभव होगा। तो ऐसे दुआओं का हाथ हमें ऊंचा उठाता है, हल्केपन की महसूसता कराता है। इसलिए सेवा और सेवा, बस ये दो ही बातें मुझे नजर आती हैं, तीसरी बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बस दुआएं। जब भी मेरा शरीर अभी है अच्छा, खूब सेवा करो, झाड़ू लगाने की भी सेवा मिले तो भी अहो सौभाग्य, क्योंकि ये भगवान का यज्ञ है, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, ये भगवान का यज्ञ है। जो भी सेवा मिले मुझे दिल से करना है और दुआओं का खजाना जमा करते जाना है। न जाने जिंदगी में कब आएगा अंधेरा, अभी मेरा तन अच्छा है, इसको मुझे सेवा में लगाना है। कब मैं खटिया पर पड़ूंगा किसको पता नहीं है, कोरोना काल में अच्छे अच्छे चले गए, किसी ने सोचा नहीं कि मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान समय का पूरा लाभ हमें लेना है, हर एक पल को सफल करना है। मेरा समय सफल हो रहा है, कैसे पता चले भाई सफल हो रहा है? सफल, अच्छा फल प्राप्त कर रहे हैं, माना मेरा समय सफल हो रहा है। आराम पसंद हमें नहीं बनना है। बाबा जो संगम युग में खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं, उनको 2500 साल का अवार्ड देता है, जाओ अपनी राजाई का आनंद लो, कुछ नहीं कमाना है, अपनी मस्ती में मस्त रहना है, कमाने की भी चिंता नहीं, इतना बड़ा अवार्ड बाबा हमें देता है। इसलिए हमें सेवा में मस्त रहना है। जो भी बाबा ने साधन हमें दिए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से धन से संबंध संपर्क से जो भी चांस मिलता है, मैंने छोड़ना नहीं है। एक स्लोगन सदा याद रखना, मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है? पश्चाताप की मार पड़ती। मौका था लेकिन मैंने हाथ से गवा दिया, जितना उसका लाभ लेना चाहिए वो नहीं लिया। तो ये पश्चाताप हमें नहीं करना है। तो हमेशा याद रखना है, भूत है सपना, भविष्य है कल्पना, और वर्तमान है अपना। ये मेरे हाथ में वर्तमान समय है, इसमें मैं जितना चाहे कमाई कर सकता हूँ। इसलिए डबल कमाई करना है, ट्रिपल कमाई करना है, इस तरह से कमाई करते जाना है और अपने को माला माल अनुभव करना है। प्रकाश मणि दादी को देखा, जानकी दादी जी को देखा, 104 वर्ष की उम्र में भी जब भी तबीयत ठीक होती थी दौड़ती थी दादी। क्यों? दुआएं मिल रही है, यज्ञ के लिए खर्ची मिलती है वो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी दुआओं का खाता जमा करना है, यही तात हमेशा उनको रहती थी। इसलिए दुआओं का खजाना बढ़ाने से बहुत खुशी रहती है और वो खुशी हमें हल्का रखती है और उड़ती कला की अनुभूति में बहुत अच्छी तरह से मदद करती है। तो इसलिए सेवा और सेवा यही तात सदा लगी रहे, बाबा की याद में मस्त रहना है। क्योंकि जो हड्डी सेवा करते हैं, तन के द्वारा हड्डी सेवा करते हैं, उनको भगवान से एक स्पेशल गिफ्ट मिलती है। कौन सी मिलती है भाई, बोलिए। हाँ जी, तन की तंदुरुस्ती मिलती है, संगम में भी और भविष्य में। जो हड्डी हड्डी सेवा करते हैं, उन्हों को बिना हड्डी वाला फरिश्ता स्वरूप बाबा गिफ्ट में देता है, लो ये तुम्हारी गिफ्ट। दूसरों को मेहनत करनी पड़ती है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए, और ऐसी आत्मा को वो गिफ्ट में भगवान दे देता है। कितना इसमें आनंद आता है। इसलिए दादियों ने हड्डी हड्डी स्वाहा करके अपने को घिसाया, अपने को तपाया और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति में सदा उड़ते वो रहे। ठीक है, नेक्स्ट नवी बात है, उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए समय के महत्व को सदा याद रखें। ये संगम युग का समय भाग्य निर्माण का समय है। हर पल हर घड़ी पद्मों की कमाई करने का वरदान बाबा ने इस समय को दिया है। इसलिए जब हमें संगम युग के समय की याद तरोताजा होती है, तब हम बहुत अच्छी तरह से प्रसाद में लगे रहते हैं और उड़ती कला में हम उड़ते रहते हैं। अगर समय के महत्व को थोड़ा सा हम भूल भी जाते हैं तो हम आराम पसंद बनने जाते हैं। सच्चा आराम किसमें है? हाँ जी, किसमें है? आराम। जब बुद्धि में निराकार राम आ जाता है, बच जाता है, वही सच्चा आराम है। खटिया तोड़ना आराम नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए संगम युग के महत्व को हमें समझना है। बाबा ने एक बार कहा था, जो महीन बुद्धि वाली आत्माएं होती है, एक एक पल को सेकंड को सफल करते हैं, और जो मोटी बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं, वो समय को एकदम साधारण रीति से यूज करते हैं या गवाते रहते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए हम महीन बुद्धि वाले महान आत्माएं हैं। समय के महत्व को पहचानना है और अपना भाग्य को निर्माण करते जाना है। संगम युग का सेकंड क्या कहता है? भगवान के साथ सेखन करते रहो, बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में देते रहो। ये सेकंड कहता है से ख्यान करते रहो। इसलिए हमें बाबा की याद में समय को सफल करते जाना है और आगे ही आगे बढ़ते जाना है, समझा? तो क्योंकि रेस में जो हम लेते हैं, परिस्थितियां बदलती जा रही है, समय बहुत समीप दिखाई दे रहा है, तेजी से भाग रहा है। आपको याद होगा बाबा ने एक सीजन में 11 मुरली चलाई थी, 16 के पहले, 4-5 साल पहली बात है। एक भी मुरली खाली नहीं है जिसमें बाबा ने समय के लिए इशारा नहीं दिया होगा, एक भी मुरली खाली नहीं। बाबा की आंखों की तरफ देखो, चेहरे की तरफ देखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, समय पर भरोसा नहीं रखो। बार बार बाबा इशारे से कह रहा है, भगवान जो तीनों कालों को जानने वाला हमें इतना गंभीर इशारा दे रहे हैं, फिर भी हम उसको इशारे को नहीं समझते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? भाग्यहीन ही कह सकते हैं अपने को। लेकिन हम भाग्यवान बच्चे हैं, भाग्य विधाता सारे संसार में भाग्य बांटने वाला मेरा बाप है। चाहे जितना मैं भाग्य लूट सकता हूं और लुटा सकता हूं, है ना? तो इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहें, समय को सफल करते रहें, तो धीरे धीरे उड़ती कला की अनुभूति हम करते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से बाबा को अपना साथी अनुभव करते जाएंगे हम। और दसवीं बात है, उड़ती कला तेरे बहाने सबका भला, ये हमें सदा याद रखना है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में ईर्ष्या द्वेष थोड़ा कभी कभी नजर आता है, कोई हमारे से आगे जाता है तो उसका टांग हम खींचने लगते हैं, लेग पुलिंग उसको कहते हैं। तो ईर्ष्या करने से हमारे बाबा की याद भी हमें नहीं रहेगी, तो इसलिए उससे अच्छा है इस संगम युग में उड़ती कला में सभी आगे बढ़ते रहें, सबकी उन्नति होती रहें, सब माला माल होते रहें, सभी खजानों से भरपूर होते रहें, सभी संपन्नता के समीप पहुंचते रहें, ऐसी शुभ भावना शुभकामना हमारे मन में हर आत्मा के प्रति सदा होना बहुत जरूरी है। किसी एक आत्मा के प्रति भी अशुभ भावना हमारे मन में है किसी कारण, तो भी अपवित्रता की ये निशानी है। संपूर्ण पवित्रता का सर्टिफिकेट जो मैंने बाबा से लेना है वो अटका हुआ है, मेरा सर्टिफिकेट एक व्यक्ति के कारण। तो हमें जो भी कोई भी हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमने शुभ भावना सदा रखते जाना है। मेरा जीवन बहते नदी की धारा की तरह है, आगे बढ़ते रहना, सेवा करना ही मेरा धर्म और कर्म है। चाहे साधु आए, चोर लफंगा आए, कोई भी आए, सेवा मैंने सबकी करते जाना है शुभ भावना रखते हुए। इसलिए शुभ भावना रखना ये संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। अभी आप कहेंगे भाई कोई व्यक्ति हमारे से कोई ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसके प्रति कैसे हम शुभ भावना रखें? मेरी ग्लानी करता है, मेरे लिए कुछ वातावरण बनाता है, हमेशा मेरे लिए खड्डे खोदता रहता है, मेरे लिए परिचिंतन करता रहता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति कैसे मैं शुभ भावना रखूं? भगवान तो नहीं हूं मैं, आखिर इंसान हूं। बताओ भाई, ऐसे व्यक्ति के प्रति शुभ भावना कैसे रखें, ये उसकी युक्ति क्या है बताइए। उसको आप देखना भी नहीं चाहते, इधर खड़ा है तो आप इधर से जाएंगे, क्योंकि आपका वो शुभ चिंतक नहीं है, अशुभ चिंतक है, ग्लानी करता है आपकी, बोलिए ना। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल में थी। बाबा के लिए कोई ऊंचा नीचा कभी बोलता था, बाबा के कानों में वो बात आती भी थी, लेकिन वो बच्चा जब बाबा के सामने आता था, बाबा उस पर प्यार ही बरसाते थे। उसके पीछे क्या राज था? बाबा उस आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप देखते थे और अंतिम स्वरूप देखते थे, वर्तमान स्वरूप नहीं देखते थे। वर्तमान में सभी में कोई न कोई कमी है, अच्छाइयां भी है, कमी भी है। कोई संसार में आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। तो हमें वर्तमान को नहीं देखना है, इसके आदि स्वरूप को देखना है। ये आत्मा जब धरती पर आई थी सत्वप्रधान थी, अनादि स्वरूप भी उसका सत्वप्रधान है और अंतिम स्वरूप भी फरिश्ता स्वरूप है। ऐसी भावना जब हम रखेंगे तो कैसी भी आत्मा हो, आपके दिल में शुभ भावना पनपती जाएगी। बड़े दिल का, बड़े व्यक्ति का दिल बड़ा होता है, और जिसका दिल बड़ा होता है उसके दिल में क्षमा भावना पनपती है, और जिसके दिल में क्षमा भावना होती है वो माफ करके, कोई गलती करता है माफ करके उसके प्रति शुभ भावना रखता है। ये बड़े व्यक्ति की निशानी है। अगर मैं अपने को बड़ा समझता हूं तो वे विशेषता मुझे अपनाना जरूरी है। ये बहुत सुंदर युक्ति है, इसको आप प्रैक्टिकल में करके देखेंगे ना, बहुत आपको मजा आएगा, है ना। तो उड़ती कला में हमें उड़ते रहना है और भाग्य का सितारा चमकाते रहना है, क्योंकि अंतिम पेपर में हमने अच्छे मार्क से पास होना है। यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, भगवान हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अंतिम पेपर तो लेंगे ना, लेकिन उस अंतिम पेपर में मैंने अच्छे मार्क से पास होना है। आपको याद होगा ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी के दिन अंतिम पेपर जो दिया, हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चला रहे थे, चलाते चलाते हार्ट में पेन हुआ तो बाबा को कमरे में लेकर आए और डॉक्टर को बुलाने के लिए बाबा ने मना किया, तो दादी के हाथ में हाथ देकर बाबा ने अंतिम श्वास लिए। तो उस समय बाबा की आत्मा पर तीन फोर्सेस काम कर रहे थे। हार्ट में जो पेन था वो अपने तरफ बुद्धि को खींच रहा था। बच्चों को इतना, इतने वर्षों से पालना दी, ये बगीचा सींचा, वो बच्चों का मोह अपने तरफ खींच रहा था। ये दूसरा फोर्स, और तीसरा फोर्स बाबा उनको परम धाम की ओर खींच रहे थे। तो बाबा ने विदेही स्थिति के अभ्यास के द्वारा देह से न्यारे हुए और साक्षी दृष्टा के अभ्यास के द्वारा हर एक आत्मा का इस ड्रामा में पार्ट है, बजा रहे हैं, साक्षी दुष्टा के द्वारा सबसे न्यारे हो गए और बाबा के प्यारे अनुभव बाबा ने किया और फुल मार्क से पास हुए। तो ऐसे हमें भी फुल मार्क से पास होने का लक्ष्य रखना है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, बहुत काल का अभ्यास करके एवर रेडी रहना है। बहुत काल का अभ्यास करके एवर रेडी रहना है। तैराक तैरना जानता है लेकिन लंबे समय का उसका अभ्यास नहीं होगा तैरने का, बहुत काल का उसका अभ्यास नहीं होगा तो उसमें उस परफेक्शन नहीं होगा और कंपटीशन में वो पास नहीं होगा, फुल पास नहीं होगा, फेल भी हो सकता है। लेकिन जो तैराक है बहुत लंबे समय से तैरता है, परफेक्शन भी उसमें होगा, उसमें मास्टरी उसकी होगी, उसमें वो एक्सपर्ट होगा और कंपटीशन में नंबर लेके ही रहेगा। तो ऐसे हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास, बाबा की याद में रहने का अभ्यास और फरिश्ता स्थिति का अभ्यास लंबे समय का करते जाना है, तभी अंतिम पेपर में हम पास होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा अपने देह से बहुत लगाव होता है। क्यों भाई? 24 घंटे हमारे साथ कोई रहता है क्या? कितना भी नजदीक का रिलेटिव होगा 5 घंटा 10 घंटा रहेगा, बाद में चला जाएगा। आत्मा के साथ 24 घंटे ये देह ही रहती है, इसलिए देह से हमारा बहुत लगाव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, जितना उतना हिसाब है। तो देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास को हमने बढ़ाना है, यही तप है, यही तपस्या है। समझा? बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना है। बुद्धि मेरी अपने देह के साथ सूक्ष्म रीति से जुड़ी हुई तो नहीं है, रहती तो नहीं है, ये अभ्यास करते जाना है, चेकिंग करते जाना है। क्योंकि 63 जन्मों का देह का भान आत्मा में है पहले से ही, और 24 घंटे आत्मा के साथ रहते हैं, इन दोनों को हमने खत्म करना है और 21 जन्म तक नेचुरल आत्मा का भान रहे, वो अभ्यास भी हमने घर जाने के पहले करना है। कितनी मेहनत करनी होगी भाई, बताओ, है ना? तो इसलिए अगर सचमुच योगी भाव का वरदान हम लेना चाहते हैं, उसका सीक्रेट पहला है आत्मा के अभ्यास को घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के पक्का करना। और दूसरा सीक्रेट है स्वमान के सिंहासन पर डटे रहना, क्योंकि स्वमान हमें यहां से बाबा के पास ले जाने का काम करता है, बाबा के पास बिठा देता है। इतना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम अनुभव करते हैं। नशा का उल्टा क्या है? शान। ईश्वरीय नशा अर्थात आत्मा की शान और आत्मा की आन और बान बढ़ाना, नशे में मस्त रहना है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से अंतिम दिन तक इन दो बातों को पकड़ के रखा, तब पहला नंबर लिया। हमें बाबा को फॉलो करना है। तो इसी ने दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉपी करना मना है, इस यूनिवर्सिटी में कॉपी करना खुली छुट्टी है, बल्कि जो अच्छी तरह से कॉपी करते हैं उनको एक्स्ट्रा प्राइज मिलता है। बताओ, तो ब्रह्मा बाबा को मैंने कॉपी करना है। प्रकाशमणि दादी जी को कभी कभी मैं मिलता था तो रमणीकता से दादी को कहता, दादी आप तो बाबा की कॉपी बनी है, फोटो कॉपी बनी है। तो दादी मुस्कुराती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जीवन को दादी ने अपने जीवन में उतारा था, इसलिए 38 इयर्स इस यज्ञ को चलाया। अच्छी तरह से ब्रह्मा बाबा की कमी महसूस था नहीं होने दी, इसलिए हमें भी बहुत अच्छी तरह से ये अभ्यास करते जाना है। और 3 शब्द हमेशा याद रखना है, योगी, प्रयोगी और उपयोगी। योगी बनने के लिए प्रयोगी बनते जाना है, जो बाबा मुरली में कहते हैं उसके प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते जाना है, उपयोग में आना अर्थात मेरी स्थिति दूसरों के सेवा में लग जाए, उपयोग में आए, तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए तीन शब्द हमेशा याद रखना है, योगी, प्रयोगी और उपयोगी। और उसके साथ तीन शब्द और याद रखें, सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल। सिंपल रहना है, सैंपल बनना है और एग्जाम्पल मेरा कोई दे, ऐसी स्थिति मुझे अपनी बनाना है। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल सारी दुनिया के सामने हम देते हैं, भाई मेरी भी तो स्थिति अच्छी हो तो मेरा भी कोई एग्जाम्पल दें, ऐसा लक्ष्य अगर हम रखते हैं तो ऑटोमेटिक स्थिति हमारी ऊंची उठती है। देखो ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं शांति स्तंभ के रूप में, बाबा गए नहीं, बाबा खड़े हैं। तो एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है ब्राह्मण जीवन में, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहां हम जाते हैं हमारा औरा काम करने लगता है, उपस्थिति होती है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा तत्वों के द्वारा होती है। तो इसलिए बाबा के पास आने के बाद मैंने अपनी स्थिति बनाना है, इसके लिए मैंने मेहनत करना है। लास्ट में प्रॉपर्टी हमारी स्थिति के रूप में ही आएगी। ओम शांति। अभी हम बहुत सुंदर अनौभ अलौकिक अनुभव करते जाएंगे। एक घंटा हमारे पास है, इतनी सुंदर अनुभूतियां बाबा आपको कराएंगे, आप मजा आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद कोई भी अनुभव करना है तो उसकी एक शर्त है। बोलिए कौन सी शर्त है। हम यहां आए हैं अलौकिक अनुभव करने के लिए, लेकिन एक शर्त है अनुभव करने की। बोलिए ना भाई। हाँ जी। अनुभव, जब तक अनु नहीं समझेंगे, बिंदु नहीं समझेंगे, स्टार नहीं समझेंगे, कोई अलौकिक अनुभव नहीं होगा चाहे कुछ भी करो। जैसे अनु समझेंगे, बिंदु समझेंगे, अलौकिक अनुभव की खान आपको मिलती जाएगी, अलौकिक अनुभव की वर्षा आप पर होती जाएगी। दुनिया में जिनके पास धन बहुत होता है, बहुत खजाने होते हैं स्थूल, उनको धनवान कहते हैं। ब्राह्मण संसार में कौन धनी आत्माएं हैं भाई, बोलो। ये धनी है, कौन है धनी, बोलिए ना। हम तो है, लेकिन उसमें से भी कौन है। हाँ जी। जिनके पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत है वो धनी है। कितने वर्षों से चल रहे हैं ज्ञान में वो अपनी जगह की बात है, लेकिन कितना अलौकिक धन मेरे पास अनुभव का है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी। इसलिए मुझे आत्मा के पास अलौकिक अनुभव का धन बढ़ता जाए इसी पर हमें ध्यान देना है। भाई मैं आत्मा अनुभवी बनी हूं या नहीं कैसे पता चलेगा। कोई कहता कितने वर्षों से चल रहे, बड़े नशे से, हम कहते 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, ये तो अपना भाग्य है। फिर भी मैं आत्मा अनुभवी हूं कैसे समझेंगे, दूसरे लोग आपको अनुभवी कैसे मानेंगे। हाँ जी बोलिए ना। हाँ धनवान जो होते हैं ना, उनका धन बैंक में पड़ा रहता है, घर में पड़ा रहेगा, लेकिन चेहरा बोलता है मैं धनवान हूं, धन की अकड़ उनके चेहरे पर होगी, मैं धनवान हूं। ऐसे अलौकिक धन जितना बढ़ता है चेहरा बोलता है, छिपता नहीं है, चेहरा बोलता है कि इस आत्मा के पास बहुत अलौकिक खजाना है, धन है, चेहरा बोलता है ना। 10 बातों में हमें अनुभवी बनते जाना, लिखो फटाफट। जब तक संपूर्ण नहीं बनते हैं, 10 बातों में हमें अनुभवी बनते जाना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। पहली बात, परमधाम निवासी बनने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। 100% भान से परमधाम में बैठना है, ये हमारा लक्ष्य है। असलीगढ़ हमारा परमधाम है, ये तो गेस्ट हाउस है। दूसरा एरिया है सूक्ष्म वतन निवासी बनने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। वर्तमान समय ब्रह्मा बाप हमारा सूक्ष्म वतन में रहते हैं, हमारा घर भी सूक्ष्म वतन कहलाता है। बार बार बुद्धि से वहां जाना है, वहां अनुभव करते जाना है। तीसरा, वैकुंठवासी बनने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। 80 और 90 के दशक में बाबा ने सतयुग में हमारी दिनचर्या कैसी होती है सारी बातें बता दी, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, वो हमने अभी अनुभव करना है। तो गोल्डन एजेड संस्कार अनुभव करेंगे, धारण करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम बाबा सतयुगी नई दुनिया में ऊंचा स्टेटस प्राप्त करेंगे। चौथा एरिया है आत्मा का अनुभव, अंत तक हमने करते जाना है। हमारा लक्ष्य क्या है, संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, केवल आत्म अभिमानी नहीं, संपूर्ण आत्म अभिमानी। पांचवा एरिया है समान में स्थित रहने का अनुभव हमें अंत तक करना है, पूर्णतया समान धारी हमें बनना है। तो समान का टाइटल जो भी हम सिलेक्ट करते हैं उसका स्वरूप बनना है। जैसे बाबा डायमंड हॉल के स्टेज पर आते चेहरा बोलता है, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आके बैठी है, बाबा अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिकल हम अनुभव करते हैं। ऐसा ईश्वरीय नशे समान के द्वारा, ईश्वरीय नशे के द्वारा ऐसा हम दूसरों को अनुभव हो, समान में स्थित रहना। छठवा एरिया है परमात्म अभिमानी बनने का अनुभव हमें अंत तक बढ़ाते जाना है। परम धाम में बाबा के पास में बैठने का अनुभव बढ़ाते जाना है। 100% वहां, 0% यहाँ, ये हमारा लक्ष्य है। कितना मैंने प्रोग्रेस किया, अभी 70% भान से मैं बैठ सकती हूँ, अभी 30% और मुझे काम करना है। 100% बाबा के साथ में हम रहे, उसको कहें संपूर्ण परमात्म अभिमानी स्थिति। सातवां एरिया है फरिश्ता स्थिति की अनुभव हमें बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, संपूर्ण फरिश्ता बनना। और आठवां एरिया है सर्वगुण संपन्न सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। एक गुण भी कम नहीं हो, एक शक्ति भी कम न हो, उसके लिए पूरा हमने अभ्यास करना है। नौवा है एरिया सर्व संबंधों की अनुभूति भगवान के साथ हमें अनुभव करना है। और दसवां एरिया है मनसा सेवा करने के अनुभव बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते रहना है, क्योंकि आप देखेंगे 4-5 साल के बाद मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा, ये वाचा कर्मणा सेवा ठप हो जानी है, केवल मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। छलन और चेहरे से सेवा करनी होगी, उसके बाद मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। कहने का मतलब है हमने रुकना नहीं, इसे प्रयोग करते जाना है, अनुभवी बनते जाना है, सभी एरिया में मास्टर बनना है। ठीक है भाई, तो अभी हम पहले 3 अनुभव कराएंगे आपको, आत्मा का अनुभव, दूसरा समान का अनुभव, तीसरा फरिश्ता स्थिति का अनुभव। 7:30 तक हम ये करेंगे। ठीक है भाई, बहुत सुंदर अभ्यास, मजा आएगा आपको। सबसे पहली बात, कोई भी अलौकिक अनुभव करना है तो उसकी विधि क्या है? अलौकिक अनुभव करने की विधि सही होगी तो सिद्धियां आपको मिलेगी। विधि सही होगी तो जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। तो विधि बड़ी सरल है। कौन सी विधि है? बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा हमें आत्मा को देखना है, दिव्य नेत्र से यहां देखना है कि मैं कौन हूं। मैं एक चमकता हुआ, दमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। ये सितारा हूं, यहां बैठा हुआ सितारा हूं, प्रकृति के बीच में बैठा हुआ दिव्य सितारा हूं। बुद्धि से देखना है, फिर उसमें स्थित हो जाना है। जितना लंबा समय तक होवे उसमें हमने स्थित रहना है। ये अनुभव करने की विधि है। फरिश्ता स्थिति अनुभव करना है, फरिश्ता स्थिति को बुद्धि रूपी नेत्र से देखो और खुद को भी अनुभव करो, उसमें स्थित हो जाओ, फिर धीरे धीरे ये फरिश्ता स्थिति भी हमारी निखरती जाएगी। ठीक है भाई, तो एक बार जोर से तालियां बजाएंगे सारे अच्छे तरह से। सभी एकदम आजाद पंछे बन के बैठेंगे। कोई कॉपी पेन डायरी पर्स वर्स सब हटा दो, एकदम आजाद पंछे बन के बैठो, सीधा बैठेंगे और ये आंखें बंद करेंगे, तीसरी आंख खोलेंगे और मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे। अभी बड़ी बड़ी दीदियां बैठी है, लेकिन हमारी दीदियां है, बहनें हमारी है। तो ठीक है ना भाई, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मारते बैठे हैं सारे। तो सीधा बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे, बड़ी विधि पूर्वक करेंगे। क्योंकि यज्ञ के शुरू में कराची में जो भी ओम मंडली में आता था, ओम की ध्वनि करता था, साक्षात्कार होता था। विधि पूर्वक ओम की ध्वनि करना है, केवल ये बाजा नहीं बजाना है। यहाँ आत्मा देखना है और वहां से ओम का संकल्प आ रहा है और वो मुख के द्वारा निकल रहा है और इस वायुमंडल में वाइब्रेशन फैल रहे हैं, वायुमंडल को पवित्र बना रहे हैं, ये ओम की ध्वनि। ऐसा विधि पूर्वक हम अनुभव करेंगे। तो सभी बैठो ऐसा सीधा, मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे। ओम शांति। भ्रुकुटी के मध्य, सब में से करना, भ्रुकुटी के मध्य मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा का दर्शन कर रहा हूँ, खुद को स्पष्ट देख रहा हूं। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो ज्योति बिंदु आत्मा को देखते हुए सभी ओम की ध्वनि करेंगे। ज्योति बिंदु आत्मा को देखते हुए सभी बोलो सब खड़े हो जाएंगे। सफेद लाइट करो और जोड़ी में एक दो को दृष्टि देंगे, अकेला कोई भी नहीं होगा, जोड़ी में एक दो को दृष्टि देंगे। सॉफ्ट म्यूजिक, फिर वो कौन सा मस्तक सिंहासन। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकोटि के मध्य विराजमान हूँ। मेरे सामने विराजमान आत्मा भाई को मैं आंखों रूपी खिड़कियों से, बुद्धि रूपी नेत्र से देख रहा हूँ। हम दोनों ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई है। एक निराकार शिव पिता की प्यारी संतान है। जैसे शिव बाबा की दृष्टि निराकारी निर्विकारी है, वैसे मेरी भी दृष्टि निराकारी निर्विकारी बनती जा रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि पारदर्शी दृष्टि थी, ऐसे मेरी भी दृष्टि पारदर्शी बनती जा रही है। मस्तक के अंदर छिपी हुई आत्मा मुझे स्पष्ट नजर आ रही है। रूह समझ कर रूह को देखने की मेरी रूहानियत की शक्ति बढ़ रही है। दिव्यता की शक्ति, अलौकिकता की शक्ति बढ़ रही है, साधारण देह के बजाय दिव्य आत्मा मुझे नजर आ रही है। जैसे आसमान में जड़ सितारों की रिमझिम लगी होती है, वैसे इस हॉल में भी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम लगी है। डायरेक्ट परमधाम से शिव बाबा हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम देख देख हर्षा रहे हैं। हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हूँ।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। जग तंत्री से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं।
अभी दाएं बाएं घूमना है और जो भी सामने आता है उसको आत्मा ही देखना है। अपने स्थान पर दाएं बाएं घूमना है, जो भी सामने आता है उसको आत्मा ही देखना है। आत्मा रूह समझकर रूह को देखने की मेरी रूहानियत की शक्ति बढ़ रही है। जैसे बाबा डायमंड हॉल में सभी को आत्मा के रूप में ही देखते हैं, ऐसे मेरी दृष्टि निराकारी निर्विकारी बनती जा रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह, आत्मा समझकर आत्मा को देखने का। ये देह तो मुझ आत्मा का केवल मकान है, ये देह तो मुझ आत्मा का व्हीकल है, वाहन है। यह देह तो मुझ आत्मा का वस्त्र है, असली स्वरूप मेरा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मौज मस्तक मणि से चारों फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी हम दूसरा अनुभव करेंगे, स्वमान में स्थित रहना। बाबा कहते हैं स्वमान धारी बनो, धारी माना धारण करो, चक्रधारी, चक्र को धारण किया, स्वमान को धारण किया। धारण करना माना स्वमान की सिंहासन पर बैठना। मुझे 19 मार्च 88 को ओम शांति भवन की स्टेज पर बाबा ने 4 मिनट का वरदान दिया है 19 मार्च 88 में, और उसका इसेंस है विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो, परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, हर कार्य में परिवर्तन शक्ति को लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो, ऐसे 4 मिनट का है। क्यों मैं बताता हूं, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, जैसे अनुभव करता हूं 1 सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती है। मैं केवल आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा विश्व, ये सिंहासन है। मोदी जी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, मैं भारत का प्राइम, अब कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बन के गए, सिंहासन, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर था, सिंहासन का इतना बड़ा महत्व है। चीफ इंजीनियर होता है ना, गुजरात का, मैं गुजरात का चीफ इंजीनियर हूं, रिटायर, मैं गुजरात का चीफ इंजीनियर था, सिंहासन नहीं, तो सारा इंपॉर्टेंट सिंहासन का है। तो बाबा का चाहना है मेरा हर बच्चा, आत्मा रूपी बच्चा, राजा बच्चे के रूप में मैं देखना चाहता हूं, हर आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है, अनुशासन करता है, इसलिए बाबा ने यह सिंहासन दिया है, यह समान का सिंहासन पर बैठे रहो मस्ती से। तो बाबा ने दुकान लगा दी है समान के सिंहासन, इसके टाइटलों की, उसमें से 1 या 2 समान का टाइटल हमने सिलेक्ट करना है अच्छी तरह से, उसके पर जैसे विश्व परिवर्तक आत्मा हो ये टाइटल लिया है, उसके बारे में डिटेल जानकारी अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है। विश्व परिवर्तक आत्मा का मतलब क्या है, विश्व परिवर्तन आत्मा के संकल्प कैसे होंगे, उसके बोल कैसे होंगे, विश्व से कल्याण के कर्म कैसे होंगे, महान होंगे, उसका चेहरा कैसा होगा, विश्व कल्याण की भावना उसके चेहरे पर हमेशा दिखाई देगी, पूरा डिटेल जानकारी उस पर अच्छी तरह से अनुभव करना है। फिर ये सिंहासन है, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, जैसे सिंहासन पर बैठ जाएंगे चेहरा बदलता जाएगा, बैठते रहेंगे तो सोचना बदलता जाएगा, बोलना बदलता जाएगा, कर्म करना बदल जाएगा, एक दिन आएगा वो टाइटल आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा, और वो बाबा चाहते हैं, क्योंकि इसमें इसी सभा में बड़े बड़े राजे महाराजे रानी महारानियां इसी सभा में बैठे, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जब सतयुग में सिंहासन मिलेगा, जब बैठेंगे तब वो नशा, वो मस्ती, वो कुमारी अनुभव होनी चाहिए, तब होगी वो, तब होगी जब अभी से उसको धारण करेंगे, है ना, क्योंकि हम बहुत महान आत्मा है, एक एक का करोड़ों में सिलेक्शन किया है भगवान ने, किया है कोई अधिकारी ने भी नहीं किया है, करोड़ों में, ताली तो बजाओ भाई। अभी आपको 1 मिनट में देता हूं, आंखें बंद करके अपनी आत्मा के लिए सुटेबल टाइटल सिलेक्ट करना है, कोई भी टाइटल, बहने बोल सकती मैं जगदम्बा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं राज ऋषि हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं आधा स्तंभ आत्मा, उदाहरण अमूर्त आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, बाबा के नैनों का नूर हूं, दिल तक तनशीन हूं, जो आपको नशा चढ़ाता है, जो टाइटल आपको नशा चढ़ाता है वो आपके लिए सुटेबल है, दूसरे से कोई मतलब नहीं आपको, दूसरा जो उसको सुटेबल होगा वो ले लेगा, साड़ियों की दुकान में जाते सारी साड़ियां नहीं खरीदते, एक दो चार जो अच्छी लगती वही खरीदते। तो ये टाइटल हमें एक या दो ही टाइटल लेना है। एक मिनट साइलेंस में आंखें बंद करके अपनी आत्मा के लिए सुटेबल टाइटल अनुभव करो, फिर हम उसका अभ्यास कराएंगे। सॉफ्ट में से करना, लाइट सफेद ही रखना, बार बार नहीं चाहिए। मिल गया टाइटल, हाथ खड़ा करेंगे, जिनको मिला है बहुत अच्छा। अभी खड़े हो जाएंगे जोड़ी के रूप में, थोड़ा सा वाला तैयार रखना सॉफ्ट म्यूजिक, जोड़ी के रूप में। ओम शांति, मैं आत्मा द्वापर युग से माया के जेल में था, माया का गुलाम था, भगवान ने मुझे राजाई प्रदान की, समान के सिंहासन पर बिठा दिया। बाबा की अनेक वर्षों से एक आश है कि हर आत्मा रूपी बच्चे को मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं, वो आश मैंने आज पूरी कर ली है। तो मैं आत्मा राजा विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हो, मेरे चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक, आंखों में ईश्वरीय नशे के फलक स्पष्ट अनुभव हो रहे हैं। मैं आत्मा राजा हूं, मेरे सामने विराजमान आत्मा राजा को बड़े सम्मान की दृष्टि से देख रहा हूं। हम दोनों आत्मा राजा दोनों के साथ शुभ भावनाओं की, शुभ कामनाओं की शेयरिंग कर रहे हैं। बड़े रिगार्ड से दोनों एक दो को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। क्या कहने मेरे भाग्य का, भगवान ने मुझे राजाई प्रदान की। वर्तमान समय में स्वराज अधिकारी आत्मा हूं और आने वाली सतयुग में विश्वराज अधिकारी आत्मा बनने जा रहा हूं। राजाओं का राजा बनाने वाला शिव बाबा तेरे परम धाम से हम सभी आत्माओं रूपी राजाओं की दरबार को देख रहे हैं, सभा को देख देख हर्षा रहे हैं, और हम सभी आत्माओं रूपी राजाओं पर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। हम सभी आत्माओं रूपी राजाओं पर बाबा गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। क्या गजब का मेरा पाठ है, क्या गजब के मेरे बाबा हैं, क्या गजब का ये ड्रामा है।
गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद गजब है गजब। इस जमी पे है तेरे करिश्मे अजब, इस जमी पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब,
गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का मालिक गजब है।
खुशबू रूहानी से महके जहां, वो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, तेरे जलवे में है तेरी खुशबू यहां,
तेरे जलवे में है
तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन,
तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन,
तुझको कहते खुदा, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, रूहों का वालिद गजब है गजब,
अभी अपने स्थान पर दाएं बाएं घूमना है, और मैं आत्मा राजा अपने भाई आत्मा को आंखों रूपी खिड़कियों से देख रहा हूं। ये आत्माओं रूपी राजाओं की दरबार लगी है, आत्माओं रूपी राजाओं की सभा लगी हुई है, सभी के चेहरे पर राजाई का नशा अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा वर्तमान समय स्वराज अधिकारी हूँ, स्वयं के मन का राजा हूँ, भविष्य में मैं जन का राजा बनने जा रहा हूँ। भगवान ने मुझे राजा ही प्रदान किए, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है, भाग्य विधाता ने मुझे ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है, राजाई का नशा मेरे चेहरे पर छाया हुआ है। राजाई के नशे की झलक फलक मेरे चेहरे पर अनुभव हो रही है। जब मैं सतयुग में सिंहासन पर बैठूंगा बैठूंगी, वो राजा की फलक नशे की अभी मुझे अनुभव हो रही है। ओम शांति शांति, थैंक यू सो मच, बैठ जाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम तीसरा अनुभव करेंगे, फरिश्ता स्थिति का अनुभव। ये एक बहुत ऊंची स्थिति है, फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता, फरिश्ता शब्द जो है पांच शब्दों से बना हुआ है, फर ईशता फरिश्ता, पांच विशेषता उसकी होती है। फर था जो फर्श से परे रहता है, धरती से पैर उसके ऊंचे दिखाते हैं, फ अर्थात फर्श से परे, र अर्थात जिसमें बहुत रॉयल्टी होती है, चलने में उठने में बैठने में रॉयल्टी होती है, इसलिए कहते हैं हाल हमारा खुशहाल हो, चाल हमारी फरिश्ते जैसी हो। फर ई अर्थात ईमानदार, स्वयं से ईमानदार, परिवार से ईमानदार, यज्ञ से ईमानदार। किसको ठगते हैं तो हम कहते ये ठग है, किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हम हैं शरीर, आत्मा है और खुद को शरीर समझ रहे, खुद से ही बेईमानी कर रहे, खुद को ही ठग रहे, तो हमें खुद से भी ईमानदार, यज्ञ से ईमानदार, परिवार से ईमानदार। पर ईश अर्थात शक्तियों के खजाने से भरपूर रहने वाला, और ता अर्थात तत्पर रहने वाला, अपनी जीवन रूपी नैया को साथ अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया तार लगाने वाला, पार लगाने वाला। ऐसी फरिश्ते की पांच विशेषताएं होती है, वो हमने धारण करना है, अनुभव करना है। और विशेष फरिश्ते में तीन बातों की संपन्नता होती है। ईश्वरीय नशे से संपन्न वो होता है, दूसरा ईश्वरीय शक्तियों से वो संपन्न होता है, तीसरा ईश्वरीय गुणों से वो संपन्न होता है, चौथा बहुत सुंदर पवित्रता का ताज, दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज उसने धारण किया होता है, और पांचवी बात उनकी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम में ज्ञान सूर्य परमात्मा से जुटी हुई होती है। ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें अपना अपने सामने इमर्ज करना है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, मुझे सेख्यान करना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर, जब मेरे जैसा बनोगे तब मैं आपको सेख्यान कर रहा हूं, वेट कर रहा है। तो वेट कर रहा है, ऐसा करेंगे तो अपने पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी और उसके जैसी स्थिति बनाने में हम बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते जाएंगे। तो अंतिम समय, जैसी गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट दुनिया की, उनके पास में आर्मी होती है, वो फोर्सेस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, ऐसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के पास भी स्पिरिचुअल आर्मी है फरिश्तों की। जिस समय धरती पर विनाश के बादल मंडराएंगे, उस समय बाबा के बच्चे फरिश्ता बनकर सारे विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करेंगे और अनेक आत्माओं को सालवेशन आर्मी बनकर सालवेशन देंगे। क्योंकि लोगों को भगवान का परिचय नहीं है, इसलिए वो चाहते कोई समस्या में फंसे हुए होंगे, कोई फरिश्ता आ जाए, कोई फरिश्ता आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल के चला जाए। तो उस समय हम बाबा के बच्चों को फरिश्ता बनकर उड़कर सारे चरब पांचों खंडों के ऊपर अनेक आत्माओं की सेवा करनी होगी। बड़े बड़े अर्थक्वेक होंगे, बड़े बड़े सुनामी होंगे, करोड़ों आत्माओं की सेवा करने के लिए हमें चांस मिलेगा, चाहे जितनी दुआएं हम जमा करना चाहे कर सकेंगे। लेकिन 2016 में बाबा ने कहा, कुछ भी हो, फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। 16 में बोला, क्योंकि बाबा जानता है, जाने जाना नहार बाबा जानता है, मेरे बच्चों को फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा करनी है, इसलिए पहले से ही हमें तैयार करना चाहता है बाबा। और साधन तैयार होगा तो हम सेवा में लगाएंगे, साधन तैयार नहीं होगा तो आपको सेवा का चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये स्पिरिचुअल बिजनेस है, और केवल हमें महाराष्ट्र वाइड या इंडिया वाइड बिजनेस नहीं करना है, ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा एक ही साथ करना है हमें। तो अंत में बहुत हमें गोल्डन चांस मिलेगा और माला माल हम हो जाएंगे। हमारा रिजल्ट भी आउट कैसे होता है, टीवी के माध्यम से वगैरह नहीं होता है, साक्षात्कार के द्वारा होता है। ये आठ अष्टरत्न, ये विश्व के प्रख्यात सबसे बड़े महान आत्मा है, ये अष्टरत्न है, माया पर पूर्णतया विजय प्राप्त के 108 फर्स्ट क्लास के हैं, 16 जो सेकंड नंबर के है, 9 लाख थर्ड नंबर के है। साक्षात्कार के द्वारा विनाश हमारा प्रत्यक्ष होगा अंत में, लेकिन वो विनाश होने के पहले हमें बहुत कमाई करना है, बहुत सेवा करना है, बहुत दुआएं जमा करना है, और ये फरिश्ता स्थिति का साधन जुटाना है। साधना कैसे भी करना पड़े, हमने ये साधन जुटाना है। ठीक है, अभी जो खड़े रहना, खड़े रह सकते हैं, पीछे वाले इधर आ जाओ मैदान में, पीछे बहुत दूर लगता है, आप गैलरी में बैठे हैं, जो भी बहनें कुमारियां माताएं आती है थोड़ा आगे आ जाओ, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति आपको अच्छी होगी। चलो आ जाओ फटाफट, हमारे पास 15-20 मिनट है, जो आगे आ सकते हैं ना, यहाँ खड़े होकर आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। जो भी बहने भी आ जाए, माताएं बहने जो भी है ना, आ जाओ, बहुत सुंदर मजा आएगा आपको। जो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे बैठते हैं ना, पता नहीं चलता है कौन बैठे किधर, वो कुर्सी पर आराम पसंद भी बैठते हैं। इधर आ जाओ, इधर यहाँ मैदान में टीचरों के सामने खड़े हो जाओ, अभी चलेगा, ऐसे लाइन में खड़े रहो, एक लाइन में ऐसे खड़ा रहो, एक खड़े तो आ जाओ, आ जाओ, जो खड़े रह सकते 20 मिनट खड़ा रहना है, जिसके टांगों में ताकत है ना वो भी खड़ना, तो पीछे बैठ चले जाना बैठ के। सब खड़े हो जाओ, अभी सब खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हाँ खड़े हो जाएंगे, आ जाओ आगे आ जाओ। अभी बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम करेंगे, आपको झूले में झूलना है ऐसा, दाएं पैर पर बाएं पैर पर। बाबा ने झूले बहुत दिए हैं, शांति का झूला, आनंद का झूला, प्रेम का झूला, बहुत थोड़ा आगे अच्छी तरह से ऊपर, हाँ बस एक दो को टच नहीं होना चाहिए, हमें झूलते जाना है। ओम शांति। पहले हमें ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता स्वरूप में देखना है, सामने रखना है, और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है। झूले में झूलते जाओ, झूलते जाओ। ब्रह्मा बाबा फरिश्तों का राजा सूक्ष्म वतन में खड़े हैं, बाबा मेरी इंतजार कर रहे हैं, मुझसे बुला रहे हैं। बस बाबा को सामने रखो और देखते रहो।
के फरिश्ते तुम्हें याद करते, बन जाए तुम सा एक आश रखते। वतन के फरिश्ते तुम्हें याद करते, बन जाए तुम सा एक आश रखते। वतन प्यार पाऊं, जन्मों जन्म की ये प्यास बुझाऊं, तेरे पास आऊं, तेरा प्यार पाऊं, जन्मों जन्म की ये प्यास बुझाऊं, सिर पे तेरे हाथ निश्चिंत करते, बन जाए तुम सा एक आश रखते,
वतन के फरिश्ते तुम्हें याद करते, बन जाए तुम सा एक आश रखते,
वतन के फरिश्ते,
वतन के फरिश्ते।
ओहो मेरा यह फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप समान तीन बातों से संपन्न है, ईश्वरीय नशे से संपन्न है, ईश्वरीय नशे की झलक फलक मेरे आंखों में अनुभव हो रही है, दूसरा ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है, तीसरा ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। मज फरिश्ते ने बहुत सुंदर पवित्रता का दिव्य और भव्य तारण किया है, मेरे बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट ज्ञान सूर्य परमात्मा से जुटी हुई है, कितना प्यारा है यह मेरा फरिश्ता
सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजर पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजर पड़ी, मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीद बड़ी, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे
हैं। अभी अभी मैं फरिश्ता इस हाल से बाहर निकलकर हनुमान की तरह, विमान की तरह विश्व के ग्लोब पर उड़ रहा हूँ, उड़ता ही जा रहा हूँ। एक तरफ ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की सकार मस फरिश्ते पर पड़ रही है, और दूसरी तरफ शक्तियों की सकास विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। मैं फरिश्ता पांचों खंडों के ऊपर रमन कर रहा हूँ, भ्रमण करता ही जा रहा हूँ। मेरे द्वारा शक्तियों की सकास अनगिनत आत्माओं पर पड़ रही है। रिटर्न में अनेक आत्माएं दिल की दुआएं भी मुझे दे रही है। पांचों खंडों के ऊपर भ्रमण करते करते मैं फरिश्ता इस हॉल में पुनः वापिस आकर अपने स्थान पर विराजमान हो चुका हूँ। ओहो, मेरे दहने बाजू में फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है, बाबा के साथ में मेरा साथ है। बाबा के फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकास मिल रही है, जिससे मेरा फरिश्ता स्वरूप निखरता जा रहा है। कितना प्यारा है यह फरिश्ता स्वरूप। मैं फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। निराकारी दुनिया में सर्वशक्तिवान निराकारी शिव पिता के पास बैठी हूँ। ज्ञान सूर्य शिव पिता को मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर देख रही हूँ। संपूर्ण एकाग्रता के साथ मेरा बुद्धि रूपी नेत्र शिव बाबा पर एकाग्र है, और मैं आत्मा शक्तियों के सागर शिव पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से मंगल मिलन महामिलन मना रही हूँ। महामिलन में खो चुकी हूँ।
भाई साहब का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि भाई साहब ने सिर्फ उड़ती कला में उड़ने की विधि नहीं बताई, परंतु साथ साथ हम सबको उड़ा दिया। बहुत सहजता से, रमणीकता से, बिगर मेहनत, बिगर पुरुषार्थ। आप लोग यहाँ थे क्या? उड़ गए, है ना? तो भाई साहब का बहुत दिल से शुक्रिया।